Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय तीन श्लोक क्रमांक 36। शंकर सामने आ, इधर आओ। शब्दों का परिचय। सह वा इदं विश्वं अमोघ लीला सृजति अवतीयति न संजते अस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हितः आत्मतंत्र षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणैः सवाइदं विश्वममोघलीलः सवाइदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न संजतस्मिन् सृजत्यवत्यति न संजतस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्राः भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्राः सर्वर्गिकं जिघ्रति सर्वगुणेषु षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश स वाइदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न संजतस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः सवाइदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्याति न संजतस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेषु
भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्राः शब्दों का अनुवाद स परमेश्वर वा अथवा इदम इस विश्वम प्रकट ब्रह्मांड को अमोघ लीलह जिसके कर्म निष्कलंक है सृजति उत्पन्न करता अवतीयति पालन करता है तथा संहार करता है नहीं संजते प्रभावित होता है अस्मिन उनमें भूतेषु समस्त जीवों में च तथा अंतरहितः भीतर रहकर आत्मतंत्रः स्वतंत्र सद्वर्गिकम् भगवान के सर ऐश्वर्य से युक्त जिग्रति सुगंधि सुगंधि के तरह ऊपर ऊपर आ सकते षड गुण ईश छह इंद्रियों के स्वामी अनुवाद अर्थात कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरण अरविंद भक्ति विराम के स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद जिनके कर्म सदैव निष्कलंक होते हैं वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छह ऐश्वर्यों से सर्वशक्तिमान है वे दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं उसका पालन करते हैं और रंच मात्र के प्रभावित हुए बिना उसका संहार करते हैं वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र है तात्पर्य भगवान तथा जीवों के बीच एक मुख्य अंतर इतना ही है कि भगवान स्रष्टा है और जीव सृष्टि है यहाँ पर उन्हें अमोघ लीलह कहा गया है जिससे सूचित होता है कि उनकी सृष्टि में कुछ भी शोचनीय नहीं है जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं व्यग्र रहते हैं वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं क्योंकि छह ऐश्वर्य धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं उनके द्वारा दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए होती है जो तीन प्रकार के कर्मों से ग्रस्त हैं तीन प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उसका संहार भी कर देते हैं वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है अतः ईश्वर तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं साधन रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सर्वललिता शीर्षाकारितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम अचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। सवा इदं विश्व अमोघलीलः सुजत्य वक्तव्यमसंगते संयुते सुजान्तरहित आत्मतंत्र सर्वर्गिकं विद्यति सर्वगुणेषु। इन श्लोकों में 35-36 ये दो तीन श्लोक में
श्रुत गोस्वामी
श्री भगवान की परमात्मा तत्व की व्याख्या करते हैं। आपको मालूम है मैं पहले बताया था 22 अवतारों का चर्चा करने के बाद श्रुत गोस्वामी ने ब्रह्म और परमात्मा का व्याख्या करना प्रारंभ किया था, क्योंकि दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी एक श्लोक बताए थे, मैं उस दिन कह रहा था वदन्ति तत्त्व इदं तत्त्वं विज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जब भगवत साक्षात्कार करने वाले लोग हैं या आध्यात्मिक वर्ग हैं, ये लोग तीन प्रकार के स्तर से भगवान को जानते हैं। कुछ लोग भगवान को भगवान भगवान है करके जानते हैं, कुछ लोग भगवान को परमात्मा है करके जानते हैं, और कुछ लोग भगवान को ब्रह्म है करके जानते हैं। जो ब्रह्म है करके जानते हैं वो भगवान की शरीर से निकलने वाले तेज के बारे में उनके पास जानकारी है। ये ओम शांति ओम वाले भी ब्रह्म का ढिंडोरा पीटते हैं, मगर वो ब्रह्म को नहीं जानते, वो भ्रमित है उसमें, ब्रह्म में भ्रम है उनका, वो भ्रम है, ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म का उपासक है और रियल उपासक होते हैं वो भगवान की सही तत्वों को जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। ओम शांति ओम वाले ऐसे कुछ ना कुछ बकवास करते हैं। और एक कैटेगरी है, एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज है, जिन लोग भगवान को परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं, और कुछ लोग हैं जैसे हम सारे, हम लोग भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान के रूप में स्वीकार करना मतलब भगवान के पूर्ण तत्व को समझ पाना। परमात्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार ये दोनों अधूरा है कि नहीं? मधुरगढ़ को किधर किधर सुन रहे? तो जो ब्रह्म और परमात्मा ये दोनों भगवान का अधूरा जानकारी है। भगवत का पूर्ण जानकारी है कि भगवान को जानना, क्योंकि ब्रह्म जो है भगवान के शरीर से निकलने वाला है कि नहीं? तो भले भगवान के शरीर से निकलने वाले चीज को जानना और भगवान को नहीं जानना मतलब अधूरा जानकारी ही हुआ। किसी को बच्चे को पूछे कि भाई मिल्क कहाँ से आया, तो वो बोलेगा कि लो प्राइस से आया या डेरी फार्म से आया है, तो ये अधूरा जानकारी है। एक्चुअली दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है कि नहीं? तो वो जानकारी होना चाहिए कि गाय से आ रहा है या क्या गधे से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये जानकारी होना चाहिए। तो ब्रह्म ये जो तेज है वो भगवान से आता है, इस चीज को जानकारी। तो उस श्लोक में सुत गोस्वामी ने इस चीज को जो इंगित किया था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है श्लोकों में। तो 35 और 36 श्लोक में परमात्मा तत्व का थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। हालांकि परमात्मा तत्व के बारे में पहले कई बार बोल चुके हैं, दूसरे अध्याय में भी थोड़ा बोले हैं, और तीसरे इसी अध्याय की शुरुआत में 1-2-3-4-5 श्लोकों में, पहले 4-5 श्लोकों में जहाँ पुरुष अवतार का वर्णन आ रहा था, उस पुरुष अवतार के वर्णन में जहाँ पे शिरोदक्षाय विष्णु का वर्णन किया गया वहां पे परमात्मा तत्व का वर्णन हुआ है इसी अध्याय में। फिर से उन्होंने यहाँ पे भी 35 और 36 नंबर श्लोक में थोड़ा सा उन्होंने वर्णन के परमात्मा के बारे में कहते हैं। जीव को इसमें बताया गया है कि 36 नंबर श्लोक को समझने के लिए जीव गोस्वामी स्टेट्स दैट टेक्स्ट 35 मे बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग इट विद टेक्स्ट 33 और 34। 35 और 36 नंबर श्लोक को समझ पाएंगे 33 और 34 नंबर श्लोक को अगर ध्यान से समझेंगे तो, ये स्वाभाविक है। क्योंकि कोई भी एक तो श्लोक को समझने के लिए उसके पहले वाले श्लोकों को अगर ठीक से समझे हुए रहेंगे तो वो बराबर समझ में आएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रवचन करता भी और सुनने वाला भी, वो श्लोक चालू करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और जैसे प्रवचन चालू करेंगे वो श्लोक एक तरफ रहता है और कुछ व्याख्या एक तरफ। इस वक्त नो डाउट वो उस श्लोक के आधार पर बताएंगे, मगर हमेशा आप पहले के श्लोकों को लेते हुए हम अगर समझेंगे ना तो हमको कैसे पूरा याद रहेगा क्या क्या हो रहा है कि नहीं। पहला अध्याय भागवत की शुरुआत कैसा हुआ, फिर कैसे ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा, कितने प्रश्न पूछा, फिर वो प्रश्नों का जवाब कहाँ कहाँ कैसे कैसे सुख गोस्वामी दिया, कि दूसरा अध्याय कैसे खत्म हुआ, फिर तीसरे अध्याय में कैसे पहले पुरुष अवतार का वर्णन हुआ, फिर 22 अवतारों का वर्णन हुआ, 22 अवतारों का वर्णन के बाद फिर तुरंत कैसे किए इन्होंने ब्रह्म और परमात्मा के बारे में बोलना चालू किए, उसमें उन्होंने क्या किए स्थूल और सूक्ष्म तत्वों के बारे में बताए, स्थूल और सूक्ष्म तत्वों में से फिर वो जीवात्मा में बताए कि ये आत्मा जो है वो शाश्वत और क्या है वो सच्चिदानंद है और सूक्ष्म और स्थूल दोनों से परे है। फिर बाद में बोलते हैं कि भगवान के ऐसे एक्टिविटीज होता है, फिर बाद में परमात्मा का वर्णन, ऐसे पूरा याद होगा अगर हम पहले से इसको रिवाइज करेंगे तो। तो ये जो 35 नंबर श्लोक देखिए कल हम लोगों ने क्या चर्चा किए थे, एवं जन्मान कर्माणि ही कर्म ही कर्तुर कर्तुर जनस्य च वर्णयन्ति स कवयो वेद गृहाणि उत्पते। इस विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदय से है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उनके बारे में उनके जन्म और कर्मों के बारे में वर्णन करते हैं जिनके जन्म और कर्म के बारे में वैदिक साहित्य में भी ठीक से बताया नहीं गया हुआ है। और क्या बताया गया है, किसके वर्णन करते हैं, जो हृदय है हृदपति, पिछले कल के श्लोक के एक शब्द है हृदपति, हृदपति शब्द का अर्थ क्या, हृद मतलब हृदय, पति मतलब स्वामी या हृदय में निवास करने वाला व्यक्ति है कि नहीं। तो हृदय में कौन निवास करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं, तो यहाँ पे परमात्मा का वर्णन हो रहा है, ऐसे समझना चाहिए अपने को श्लोक को। अभी परमात्मा का वर्णन हुआ है, आज के श्लोक देखिए, आज के श्लोक का शुरुआत होता है सहवा। सह मतलब प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है परमात्मा। कभी कभी अन्वय जो है ना वो पहले के श्लोक को लेके उसके भाव को लेके लिख दिया जाता है, एग्जैक्ट शब्द का अर्थ कुछ और भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे सह मतलब असलियत में सह शब्द का अर्थ होता है वो कौन, वो परमात्मा, क्योंकि पिछले श्लोक में किसका वर्णन हो रहा है, हृदपति का वर्णन हुआ है कि नहीं, परमात्मा का वर्णन हुआ, तो स्वाभाविक है कि उसके बाद वाला श्लोक में अगर वो ये शब्द आता है तो ये स्वाभाविक है कि वो परमात्मा के लिए इंगित किया गया। इसीलिए प्रभुपाद ने अनुवाद में सीधा क्या लिख दिया, परमेश्वर जो सबके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से। इसलिए कभी कभी जो अन्वय के लिए अलग अलग ग्रंथों को हम लोग रेफर करते हैं, प्रभुपाद का ये जो अनुवाद है ये भी अन्वय के जैसा ही है, नो डाउट। अन्वय का अर्थ होता है कि ये जो श्लोकों की पुंज, ये जो श्लोकों के शब्द है वो हिंदी अनुवाद के लिए उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में भी ऐसा होता है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे ना उसका वर्ब एडजेक्टिव सब बदल जाता है इधर उधर, ए टू जेड एज इट इज, हम हिंदी में उसको नहीं लिख सकते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट करते समय फिर सब कुछ इधर उधर करना पड़ता है, ठीक वैसे ही संस्कृत में भी है। संस्कृत के श्लोकों का जब बोलते हैं तभी छंद को ध्यान रखते हुए और क्या होता है संस्कृत भाषा को ध्यान रखते हुए, व्याकरण को ध्यान रखते हुए शब्दों को बदल दिया गया रहता है बैठने बिठाने के लिए। जब हिंदी अनुवाद किया जाता है उसको सब सजाना पड़ता है, उसको अन्वय कहा जाता है, और वो भी कैसे, भाव और पूर्व श्लोकों को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से समस्त श्लोकों को अगर पढ़ेंगे तो हमको बहुत आसानी से ये श्लोक समझ में आ जाता है। तो सह मतलब वो मतलब यहाँ पे परमात्मा के लिए, हृदपति के लिए ये शब्द व्यवहार किया गया। सह सवा अथवा इदम विश्वम अमोघ लीला, तो वो व्यक्ति जो परमात्मा है इस प्रकट जगत में या इस प्रकट ब्रह्मांड में अमोघ लीलाओं को करते हैं। तो अमोघ लीलाओं का अनुवाद करते हुए श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी लीलाओं में रंच मात्र भी क्लेश नहीं है, रंच मात्र भी क्लेश नहीं है, ऐसे लीलाओं को करते हैं क्योंकि वो सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है। छह प्रकार के ऐश्वर्य उनके अंदर पूर्ण मात्रा में है। इसीलिए क्या है छह प्रकार का ऐश्वर्य, ये भगवान शब्द का अर्थ का व्याख्या करते हुए पराशर मुनि इस बात को कहते हैं। पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिताजी है। पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव जी के पिताजी। पराशर मुनि ये इस बात को कहते हैं भगवान किसको कहना चाहिए। भगवान शब्द का अर्थ का व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं, भग मतलब ऐश्वर्य अपुलेंस, वान मतलब वन हु पोजेसेस, जो एक्वायर किया हुआ है, जैसे धनवान गुणवान विद्वान, वान मतलब जिसके पास है वो चीज, भगवान मतलब वो व्यक्ति जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है। क्या है ऐश्वर्य? ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्य, ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रियः ज्ञान और वैराग्य, ये छह प्रकार के चीजें, ये छह प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण मात्रा में है उसी व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे उनके सारे लीलाएं जो एक्टिविटीज इवन जन्म जन्म और कर्म ये सब कुछ दिव्य है। गीता में क्या कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जुलम्। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। यहाँ पे ये शब्द जो है ना अमोघ लीला, अमोघ लीला उसी प्रकार की व्याख्या है क्योंकि उनके लीलाएं अमोघ है, उसमें किसी भी प्रकार का कलमस नहीं है। रीजन बिहाइंड अमोघ लीला, रीजन यही है कि सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है, वो छह ऐश्वर्य से युक्त है और सड़ ऐश्वर्य वो भी पूर्ण मात्रा में है, अंश मात्रा में नहीं या दिखाई पड़ रहा है ऐसा नहीं, संपूर्ण मात्रा में उनके पास है, इसलिए वो भगवान है। और उनकी लीलाएं क्या क्या है फिर, ऐसा कौन सी लीला है जो अमोघ लीला है कि नहीं? अमोघ लीला है, ठीक है, इसमें कोई कलमस नहीं है क्योंकि सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है, क्योंकि सड़ वर्गीकम जिघ्रति, ये जिघ्रति शब्द जो है ना वो ये सड़ वर्गीकम और सड़ गुण और साथ साथ में उनकी जो अमोघ लीला को कैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करता है ये जिघ्रति शब्द। कभी कभी हम कोई भी चीज का व्याख्या करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं, है ना, अलंकार, कभी कभी अलंकार कहा जाता है। अलंकार शब्द का अर्थ है, ये ग्रामर का एक शब्द है अलंकार, मगर वो ग्रामर के बारे में भूल जाइए, साधारण तौर पे अलंकार मतलब क्या है, आभूषण, आभूषण का काम क्या है, सुंदरता को बढ़ाना। तो ये अलंकारिक शब्द मतलब ये जो भाषा की सुंदरता को या उस फ्रेज वो सेंटेंस उस श्लोक की सुंदरता को बढ़ाता है, कभी 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 उस व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है जिसके बारे में व्याख्या किया जा रहा है, कभी कभी उस व्यक्ति का जो गुण बताया जा रहा है उस गुण का सुंदरता को और बढ़ाता है, उसको अलंकार कहा जाता है। ये भी कई प्रकार के हैं। तो यहाँ पे जिग्रति शब्द उदाहरण देता है भगवान की उन गुणों के बारे में या उन लीलाओं के बारे में। क्या है? सबसे पहला है अमोघ लीला, इसीलिए क्योंकि वो सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है। पहला, अगर सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है इसीलिए अमोघ लीला, तो कौन सा लीला है वो, एक्टिविटीज क्या है? वो एक्टिविटीज है सृज्यति, और अवती अति, ये दो चीजें है कि नहीं? सोवित लोग सूर्यति अवती इति मतलब पहले तो ये जो विश्वम ये प्रकट ब्रह्मांड है उसको वो सृजन करते हैं और साथ साथ में पालन करते हैं और साथ साथ में संहार भी करते हैं, ये तीनों चीजें। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने लायक है, सृष्टि करते हैं ब्रह्मा, पालन करते हैं विष्णु और संहार करते हैं शिव जी। तो यहाँ पे क्यों ऐसे बताया गया कि वो सृष्टि भी कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं, क्यों ऐसा बताया गया? सृष्टि भी दो प्रकार की होती है, सृष्टि दो प्रकार की होती है, सर्ग और विसर्ग। सर्ग और विसर्ग, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको विसर्ग कहा गया और भगवान जी का जो सृष्टि है वो सर्ग है, क्योंकि ब्रह्मा जी जब भी जन्म हुआ उसके बाद ही वो कुछ बनाएगा ना, तो ब्रह्मा जी जन्म होने से पहले जो कुछ हुआ वो कहां से आया? वो सर्ग है। तो जो मूल चीजें हैं सृष्टि का ये सब कुछ भगवान के द्वारा प्रकट है। इवन ब्रह्मा भी जो ये संसार को बना डाला, 14 लोगों को जो बना डाले, तो 14 लोगों को बनाया कैसा, किन किन चीजों को लेके बनाया उन्होंने? मेटेरियल तो चाहिए ना भाई, घर बनाने के लिए ईंट पत्थर छड़ ये सब चाहिए, ये सब कहां से लाया ब्रह्मा? वो प्रदान किए भगवान ने, वो प्रदान किए महत्त्व के रूप में, प्रधान के रूप में वो उसको प्रदान करते हैं, जिसमें ये 24 तत्व निहित है, 24 एलिमेंट्स। तो ये 24 एलिमेंट्स कहां से आए? ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए सृष्टि भी वही कर रहे हैं। इवन ब्रह्मा भी, ब्रह्मा जन्म होने के बाद भी कुछ पता नहीं था, बताया उनको भाई ऐसा ऐसा करो है कि नहीं, तब पर भी ब्रह्मा बना दिया, बच्चे भी पैदा करना है और बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ाना है, वो भी उसकी बस की बात ना, पहले अपना 5-4 लड़के बनाए, 4 लड़के कल्टी मार दिए, बोले कि हमको नहीं करना है, फिर बाद में मनु इत्यादि, कई बार भगवान स्वयं उनके पुत्र बने, मन के सब कार्यों को आगे बढ़ाए। इस प्रकार से सृष्टि पालन स्वयं भगवान करते हैं, ये विष्णु के अंदर के काम है, और संहार कौन करते हैं? शिव जी। मगर गीता में भगवान क्या कहते हैं? कालोस्मि, मैं काल हूं, सब कुछ खत्म कर देता हूं समय आने पर। तो भले ही भगवान शिव जी इसका अधिष्ठात्रा देव है, मगर मूलतः भगवान ही संहार करता है, क्योंकि तत्व के दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे ना, शिव जी कौन है? इज एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड संकर्षण, संकर्षण की विस्तार मात्र है, लेकिन और संकर्षण कौन है? वो बलराम के विस्तार या बलराम स्वयं है, और वो बलराम कौन है? कृष्ण के विस्तार है। तो अल्टीमेटली ये शिव कौन है? मधुर गौर प्रभु स्वयं भगवान ही है वो शिव, इसीलिए ये संहार भी उनके हाथ में ही है। और दूसरा, और वहां पे भगवान के अवतारों के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, शुरुआत में हम लोगों ने विचार किया था, वो 6 प्रकार के अवतारों में से एक अवतार है भगवान के, उसको क्या कहते हैं? गुण अवतार। गुण अवतार में भगवान स्वयं अपने आप को ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रूप में वो विस्तार करते हैं। तो महेश जी कौन है, शंकर जी कौन है? भगवान के गुण अवतार है। कौन से गुण को कंट्रोल करने के लिए वो है? तमो गुण को कंट्रोल करने के लिए। रजो गुण को कंट्रोल करते हैं ब्रह्मा जी, और सत्व गुण में रहते हैं विष्णु। तो ये गुण अवतार है भगवान शिव, इसीलिए इस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, तो असलियत में इस संसार का प्रलय भी भगवान करते हैं, मगर एक चीज है, वो जन्म भी देते हैं यानी सृष्टि करते हैं, लालन पालन भी करते हैं और खत्म भी कर देते हैं, मगर उसमें रंच मात्र भी उनको लगाव नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। हम किसी चीज को बहुत मेहनत करके बनाया और उसका देखभाल किया, वो नष्ट होता है तो दुख होता है ना, है कि नहीं? कितना मेहनत करके मैंने सब्जी लाया और फेंक दिया होता है ना? मगर यहाँ पे ये जो चीज है मेन चीज, इसको समझना चाहिए एक्चुअली। इसलिए उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना खत्म कर देते हैं, संहार कर देते हैं सब कुछ को, आसक्ति के बिना, लगाव के बिना। वो भले ही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, मगर इस संसार में एनग्रॉस नहीं होते हैं, वो हमेशा स्वतंत्र ही रहते हैं। ये भगवान का भगवत्ता है, ये भगवान का भगवत्ता है। ये जो अमोघ लीलाओं में से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, इन सारे कार्यों को करने पर भी वो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। तो पद्र पद्म पत्र मीमाम भसान जैसा, पद्म पत्र पानी में रहता है मगर वो पानी के साथ, पानी उसमें लगता नहीं है, उसको गीला नहीं कर पाता है। ठीक वैसे भगवान भौतिक संसार को जन्म देते हैं, भौतिक संसार के अंदर रह के उसको लालन पालन करते हैं। हाँ, इवन कैसे रहते हैं सोचो, सबसे पहले महाविष्णु के शरीर से जो ब्रह्मांड निकलता है, हरेक ब्रह्मांड में घुस जाते हैं गर्भ दक्षाई के रूप में, और हरेक जीव में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, हरेक जीव में रहते हैं, कण कण में रहते हैं, फिर भी लगाव नहीं है इस संसार के प्रति। ये अमोघ लीला है उनका, क्योंकि सर्ववर्गीकम छह ऐश्वर्य से पूर्ण है और षड गुणेशु वो छह इंद्रियों की स्वामी है। और बीच में शब्द आता है जिग्रति। जिग्रति शब्द को समझने के लिए वो कैसे एक उदाहरण दिया गया है, वो कैसे अनासक्त है, कैसे छूते नहीं है संसार को या संसार के साथ लगाव नहीं है। जैसे कि जिग्रति, जिग्रति शब्द का अर्थ क्या है, सुगंधि के तरह ऊपर ऊपर आसक्त। क्या समझ में आया इसका? सुगंधि की तरह ऊपर ऊपर आसक्त मतलब क्या? हम किसी चीज का अघ्राण करते हैं, मान लीजिए ये पुष्प है, इस पुष्प से सुगंध आ रहा है, हम पुष्प को छुए बिना सुगंध ले पा रहे हैं कि नहीं? पुष्प के साथ हमारा किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं है, मगर हमको ये आघ्राण, ये सुगंध जो है वो आ रहा है। ठीक उस प्रकार से उस चीज को छुए बिना भौतिक संसार का सृष्टि भी करते हैं, लालन पालन भी करते हैं, सहार भी कर देते हैं, मगर उसको उनको स्पर्श नहीं करता है भौतिक जगत। समझ में आया? ये उदाहरण जिग्रत शब्द। और एक चीज का व्याख्या यहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसके बारे में वर्णन नहीं किया है, जिसको षड गुणेशु, षड गुणेश, गुणेश ने गुणेश, षड गुणेश शब्द ये तीन शब्दों को लेके बनता है, उसका संधि विच्छेद करेंगे, षड गुण और ईश आएगा। षड मतलब छ, गुण मतलब इंद्रिया, और ईश मतलब कंट्रोलर, स्वामी, है कि नहीं? भगवान का एक नाम है क्या, इंद्रियों का स्वामी, ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान का एक नाम, ये गुणेश भी ऋषिकेश ही है। तो षड गुणेश, मगर ये एक विशेषता है, षड गुण के ईश्वर है, छह गुणों के, छह इंद्रियों का ईश्वर, मगर अपने इंद्रिया कितना है मुख्यतः, वेदम वो कितने इंद्रिया है? ग्यारह इंद्रिया। कितना है मधुर गौर भगवान? आठ मुख्य थे। सुविध प्रभु क्या है, क्या उधर से हाथ उठा क्या कितने इंद्रिया है? संक्रा साइड इंद्रियों का वर्णन है, इसलिए बोला गया है पांच मुख्य इंद्रियां और मन, मन इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए मन को गिना गया है। उसका और लिखा वक्त नहीं दिया गया है, मगर सर्ड इंद्रियों को ऐसे जानते थे। वहां पे 16 इंद्रियों का वर्णन भी ऐसे ही किया गया था, है ना, उसमें भी ऐसा था। तो इन चीजों को थोड़ा जानना चाहिए, कभी कभी सर्ड इंद्रिया कौन सा है करके पूछेंगे, किन्तु वैसे तो पांच इंद्रिया है और पांच इंद्रियों वैसे 10 हो रहा है, मन को मिलाएंगे तो 11 हो रहा है कि नहीं। वहां 16 क्यों गिना गया था? उसमें वो मन बुद्धि अहंकार और ये सब भी गिना गया था उसमें, इसलिए वो 16 तक कुछ तो जा रहा था ऐसा। ये सारा गिनती भी थोड़ा बहुत अपने को जानकारी होना चाहिए पहला। और एक चीज यहाँ पे मेंशन था जो मैं पढ़ते समय सोचा था, उसको मैं व्याख्या करूंगा करके। उसके पहले वाला श्लोक देखिए, एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुर रज हि कर्तुर जनस्य च वर्णयन्ति स्वकवयो वेद गुह्यानि ऋग्पते। ये जो श्लोक है इसमें जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः एक शब्द आता है और अजन्यस्य ये दो शब्द आता है। सिर्फ भागवतम में ऐसे कई बार इस प्रकार के शब्द यूज किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। भागवतम ये शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है इसलिए कम यूज किया गया, मगर आप वेदों में जाएंगे ना ऐसे ही शब्द मिलेंगे। ये जो अकर्तु अजन्यस्य ये शब्द कहता है मालूम है क्या? वो सीधा सीधा भगवान की निराकार का वर्णन करता है। भगवान का कोई आकार नहीं है, अजन्मा है और निर्गुण, निर्गुण कहते हैं ना निर्गुण ब्रह्म, ये शब्द कौन ज्यादा यूज करते हैं मालूम क्या? निरंकारी लोग है ना, निरंकारी बाबा, वो दाढ़ी वाला पगड़ी बांध के हो इसको कहता है निर्गुण ब्रह्म, उनका उनका उनके मुंह से ज्यादा निकलेगा ये शब्द जो है ना अकर्तु अकर्तु अजन्यस्य। और बाद में यहाँ पे ये सारा शब्द जो है ना निर्गुणत्व को भगवान की, और एक है शब्द में भूल रहा हूं, ये इन लोगों को प्रोत्साहन देने वाले शब्द है। इसलिए कभी कभी ये लोग भागवतम का भी हमें उदाहरण देंगे, देखो भागवत में बताया गया, देखो भगवत गीता में बताया। हम सबको ये जानना चाहिए कि कैसा है वो अकर्म अकर्तु शब्द का अर्थ होता है कि अकर्ता, उनके लिए वो कुछ करते नहीं है। अरे कृष्ण ने आया राधा और गोपियों के साथ लीला किया, पहाड़ को उठाया, असुर को मारा, भगवान कभी कुछ नहीं करता, वो निर्गुण ब्रह्म है, उनके लिए कोई कर्म नहीं है, वो तो आके ये सब कर्म कर रहा है इसलिए कृष्ण भगवान नहीं। ऐसे ऐसे भी बदमाश होते हैं, उनको सिंपल भाषा में बदमाश कहेंगे। इसका व्याख्या प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से की है और यहाँ पे जीव गोस्वामी इत्यादि इसका व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। वो कहते हैं श्री जीव गोस्वामी एक्सप्लेन टेक्स्ट 35 इन मोर डिटेल्स द फ्रेज अकर्तुर अजन्यस दिस टू वर्ड्स द लॉर्ड हैज नेदर वर्क नॉर एक्टिविटीज शुड बी अंडरस्टूड टू मीन दैट द लॉर्ड हैज नो मेटीरियल वर्थ एंड एक्टिविटीज इज वर्थ एंड एक्टिविटीज वर्थ एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटली स्पिरिचुअल and are different from their material counterparts. The phrase Veda Guhyani ये अलग हो गया। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी और प्रभुपाद इस बात को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं। तो ये जो शब्द है जो कुछ करते नहीं है, जन्म नहीं लेते हैं करके, तो फिर भागवत में आगे वर्णन आएगा देवकी के गर्भ में जन्म लिए, यहाँ पे बताया गया कि वो जन्म नहीं लेते तो फिर वो भगवान है, या भगवान जन्म हुए तो फिर क्या हुआ, वो भौतिक शरीर को हमारे जैसा स्वीकार करके जन्म हुए, ऐसा वर्णन होता है। नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। तो व्हाट इज द दिव्य और ट्रांसेंडेंटल स्थिति क्या है, वो स्टेज क्या है, ये है कि वो अकर्तु और अजन्यस्य, वो जन्म नहीं होते हैं और वो कुछ करते नहीं है। अर्थात उनके कोई भी एक्टिविटी, उनका कोई भी कार्य हमारे जैसा भौतिक नहीं है और उनका जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं है। हमारा जन्म को कर्म जन्म कहा जाता है और उनके जन्म को कारण जन्म, किसी रीजन के वजह से वो यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से इन सारी चीजों को आपको समझना चाहिए। आज के श्लोक में बस यही कुछ चीजें बताया गया है। और प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में इतना कुछ बताया है, अमोघ लीला और छह ऐश्वर्य के बारे में बताया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद।